मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 16 अप्रैल 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आप सबसे लिस्ट बनाने की बात कही थी और इस बात की लिस्ट की अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में जिन जिन बातों को, जिन जिन घटनाओं को, जिन जिन लोगों को, जिन जिन स्थानों को, जिन जिन गतिविधियों को या जिन भी वस्तु चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं, मैंने कहा था कि आप उन सब की अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू में मैंने कहा कि यह बहुत ही खूबसूरत आत्म साक्षात्कार करने का क्षण है, उसका आप सही मायने में उपयोग कर सकेंगे। आपने सुना होगा एक पद्धति है विपश्यना की। कई मेरे जो प्रिय श्रोता हैं वो मुझे लिख करके सजेस्ट करते हैं कि सर आपको कुछ दिनों के लिए विपश्यना करना चाहिए। पता नहीं वैसा क्यों कहते हैं, लेकिन विपश्यना की पद्धति है और उसमें यही होता है कि आप एक सप्ताह, 10 दिन, अलग अलग तरीके की उनकी विपश्यनाओं की पद्धति है, लेकिन मूल बात सबकी यही है कि आपको बिल्कुल एकांत में रखा जाता है, बिल्कुल अकेले रखा जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपसे मोबाइल फोन भी ले लिया जाता है, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं होता, आप केवल एकांत में रहिए। वो ध्यान की पद्धति बताते हैं, वो ध्यान करते रहिए और फिर वो आपको दिखाएंगे कि आप में कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। तो उनमें जो परिवर्तन की जो गुंजाइश दिखाई देती है वह आत्म साक्षात्कार के कारण ही, जो एकांत के क्षणों में ही संभव होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से ही सही, मजबूरी में ही सही, अब जिन स्थितियों में हम सब रह रहे हैं तो कोशिश करें कि इन क्षणों में ही, भले ही हम इसे बुरा क्षण कह लें, और डेफिनेटली जिस तरह से दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है इसे हम एक बुरा क्षण ही कहेंगे, ईश्वर न करे कि इस तरह के क्षण फिर कभी आए, लेकिन जब आ ही गए हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अब इसमें से हम क्या बेहतर निकाल सकते हैं अपने लिए, और डेफिनेटली निकल कर आएगा। मान करके चलिए कि जब ये दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की जो दुनिया होगी वो बिल्कुल वही दुनिया नहीं होगी जो इससे पहले रही है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना वायरस की जो घटना घटित हो रही है यह दुनिया के इतिहास को दो भागों में विभाजित शायद कर दे, कोरोना वायरस से पहले का इतिहास और कोरोना वायरस के बाद का इतिहास। डेफिनेटली अब जो मनुष्य सामने आएगा वो पहले की तुलना में कहीं ना कहीं तो बदला हुआ मनुष्य होगा। तो उसमें ये बदलाव आएगा कैसे? सीधी सी बात है कि अभी वह जिन स्थितियों का सामना कर रहा है, जिन स्थितियों को यूं कह लीजिए कि झेल रहा है, या यूं कह लीजिए कि बहुत ही सकारात्मक रूप से जिन बातों को, जिन तथ्यों को महसूस कर रहा है, यदि उन तथ्यों को इसके बाद वह सोच समझ कर आगे बढ़ाएगा तो एक दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे ऐसा लगता है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि दुनिया बदली हुई दिखाई देगी तो दुनिया कैसे बदलेगी? नदियां वही रहेंगी, पहाड़ वही रहेंगे, पेड़ वही रहेगा, आकाश, सूर्य और चंद्रमा वही रहेंगे, आदमी ही बदला हुआ होगा, और बिना आदमी के बदले दुनिया बदलती भी नहीं है। तो हम भी एक आदमी हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को कितना सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं, और उसी के लिए मैंने आप सबसे एक लिस्ट बनाने की बात कही थी। जब आप लिस्ट बना चुके हैं, अब जबकि आप लिस्ट बना चुके होंगे, मैं मान करके चल रहा हूं कि आप इतना तो मेरी बात मानेंगे, सुनेंगे, क्योंकि मेरे आप डेली ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं, लगातार मेल के जरिए मुझे सूचनाएं भी डेली कई इस तरह के मेल मिलते रहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह के सकारात्मक परिवर्तन आए हैं जिससे मेरा उत्साहवर्धन भी होता है। तो मैं मान करके चलता हूं कि मेरी बातों को थोड़ी सी तो तरजीह आप सब देते हैं, थोड़ा सा सम्मान उसका करते हैं, तो इस बात का भी सम्मान आप सबने किया होगा। तो दोस्तों, अब जो भी आपकी लिस्ट बनी है, बेहतर होगा कि आप उन लिस्टों की जांच करें, एक एक बात की जांच करें कि अभी आप उन्हें मिस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस को मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आप तुलना करें कि जब आप ऑफिस जा रहे थे उस समय आपका मनोविज्ञान क्या होता था, और ये करना ही चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। देखिए, अगर सुपरफिशियल तरीके से आप मेरी बात सुनकर के निकाल, नहीं हमें तो ऑफिस तब भी जाना अच्छा लगता था और अभी भी जाना अच्छा लगता है, तब फिर बात नहीं बनेगी। सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि हमें तो तब भी जाना अच्छा लगता था क्योंकि अभी नहीं जाना बहुत खराब लग रहा है। तो दिमाग में बिल्कुल चेतना में आपकी ये बात आएगी कि हमें तो तब भी जाना अच्छा लगता था, लेकिन गहरे में सोचिए, हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें आप दूसरों से शेयर नहीं करते होंगे जो बातें आपको ऑफिस में खराब लगती होंगी, मन ही मन आप उन्हें रखते होंगे, परेशान होते होंगे, क्या फायदा दूसरों से कहने पर। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी शिकायतें आपकी ऑफिस से होती होंगी। घर से निकल करके जाओ, बसों के धक्के खाओ, इसके बाद ऑफिस पहुंच करके फिर वहां रहो, टिफिन का खाना खाओ, वहां फिर बॉस हैं, वहां और दूसरे जो लोग हैं जो आपकी टांग खींच रहे हैं, दूसरी तरह की परेशानियां हैं, ये काम करो वो काम करो, ये भागा दौड़ वो भागा दौड़, उसकी डांट सुनो ये करो, यार ये भी कोई जिंदगी है। और मैं आपको ईमानदारी के साथ बताता हूं कि अगर आप किसी को एकांत में ले जा करके पूछे ना कि भैया ये बताओ कि तुम क्या इस काम को छोड़ करके कोई दूसरा काम करना चाहते हो, अगर मिल जाए तो बोले हाँ भैया एकदम, मैं तो अभी छोड़ने को तैयार बैठा हूं, बस ये तो कुछ दूसरा मिल नहीं रहा है, मजबूरी है जो मैं इसे कर रहा हूं। ज्यादातर लोगों से आपको यही उत्तर मिलेगा, और अगर ये उत्तर मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि इस उत्तर के केंद्र में यही है कि मुझे अभी के अपने काम से शिकायतें हैं, और उन्हें दूसरा काम दे दीजिए, कुछ दिनों के बाद उस काम से भी शिकायतें होने लगेगी, तीसरा दे दीजिए, उन काम से भी शिकायतें होने लगेगी। यह मनुष्य का यूं कह लीजिए एक मूलभूत चरित्र ही है, शिकायती चरित्र। जिन चीजों को भी वो पा लेता है, पहले तो उसे पाने के लिए वो दिन रात की कोशिश करता है, और वो सपने देखता है कि अगर ये मिल गया तो बस फिर क्या बात है, ये मिल गई तो फिर बस क्या बात है, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और जब वो चीज मिल जाती है तो फिर पता लगता है कि वो चीज दो कौड़ी की हो जाती है, इसके बाद फिर वो नई की तलाश करने लगता है। मुझे लगता है कि ये अभी बहुत अच्छा अवसर है, जबकि हम इस तरह के अपने मनोविज्ञान का अच्छा खासा व्यावहारिक स्तर पर परीक्षण करें। अगर मैं अभी उन चीजों को मिस कर रहा हूं जिनके बारे में मेरी पहले शिकायतें हुआ करती थी, तो इसका मतलब एक ही हुआ कि या तो मेरी वो शिकायतें गलत हैं, गलत थी जिसका आभास मुझे अभी हो रहा है, या फिर अभी जो मैं मिस कर रहा हूं वो गलत है, मुझे मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे तो उससे मुक्ति मिल गई ना। आप ये सोचिए कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है या आपको दर्द हो रहा है और किसी वजह से आपकी वो बीमारी दूर हो गई, आपका वह दर्द दूर हो गया, तो आपके लिए तो ये बहुत राहत की बात है ना, बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये, आप तो आराम से रहिए, इत्मीनान से रहिए क्योंकि आपको उस शिकायत से मुक्ति मिल गई। लेकिन महसूस हो रहा है कि नहीं, शिकायत से मुक्ति नहीं मिली है बल्कि नई तरह की शिकायतें पैदा हो गई हैं। आप देखिए ना, अब आप लॉकडाउन को शिकायत देने लगी है, क्या हो गया यार, ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से बातचीत ही नहीं हो पा रही है, घर में दिन भर पड़े हुए हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, जिंदगी नीरस हो गई है, और यह सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि या तो आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, या अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, या लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो भी कारण हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो यह होता है कि जिन कामों पर हमारा जीवन आधारित होता है, जो हमें पूरी तरह से आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हीं के प्रति सबसे ज़्यादा शिकायतें होती हैं। और अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि नहीं, शिकायतें तो थीं लेकिन वो जायज नहीं थी। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जीवन में इस तथ्य को आप समझ गए कि हमारी जो शिकायतें होती हैं, ज्यादातर शिकायतें जायज नहीं होती हैं, तो जीवन का स्वरूप एकदम से बदल जाएगा और शिकायती व्यक्तित्व कृतज्ञ व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही यह होगा, आप मान करके चलिए, जिस क्षण यह घटना घटित होगी, आपके जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। प्लीज इसे करें, बार बार करें, समझें, और आप पाएंगे कि एक बहुत अच्छा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आप अब उस दिशा में आगे चल चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।